बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम कुछ नई बातों को सीखेंगे और प्रभु के सम्मुख लाएंगे ताकि हम उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 24 पद तक अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने याकूब और यूहन्ना की माता का निवेदन अपने पुत्रों को दाहिने और बाएं हाथ बैठाने का था। आज हम उससे आगे के पदों से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, तो कृपया आप अपने नोट या बुक या डायरी तैयार कर लें। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 25 पद से 27 पद में यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम में से ऐसा न हो। जो कोई तुम्हें बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मित्रों, यह सेवा और महानता की यह एक नई पहुंच है और जो लोग मसीह सेवा से जुड़े हैं उनके मस्तिष्क में यह बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप प्रभु के लिए गाने जा रहे हैं तो कृपा करके आप अन्य गायकों के ऊपर जाने की कोशिश ना करें। यदि आप सुसमाचार का एक प्रचारक बनना चाहते हैं तो आप अन्य सेवकों को एक तरफ ढकेलने की कोशिश ना करें। यदि आप कलीसिया का एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो किसी दूसरे के बूते पर या उनको हटाकर ऐसा ना करें। हमारे प्रभु इसे बहुत स्पष्ट करते हैं, महान होने का तरीका और उसकी सेवा करने का तरीका वो है सबसे छोटा स्थान लेना, अर्थात नम्र बनना। अब जैसे ही यीशु और उसके शिष्य यरूशलेम शहर के बहुत निकट आ गए तो वह पांचवी बार उन्हें अपनी मृत्यु का समय निकट आने के बारे में बताते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों को छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। मित्रों, यह एक अद्भुत पद है और प्रत्येक मसीहियों को चाहिए कि वे इस पद को याद कर लें। यह पद आपको मुखाग्र होना चाहिए ताकि जब कभी गवाही देने का मौका मिलता है तो आप इसे बता पाए कि क्यों यीशु मसीह इस संसार में आए और उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि अभी भी इस विषय पर संदेह बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यीशु दो अंधे व्यक्तियों को ठीक करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, जब वे यरूहे से निकलकर जा रहे थे तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा। यीशु और उसके शिष्य यरूहे से यरूशलेम को जा रहे हैं, जो उस व्यक्ति के विपरीत दिशा में है जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और डाकुओं के बीच घिर गया। यहाँ पर प्रभु यरीहो से यरूशलेम तक डाकुओं के साथ मरने जा रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा का यह दूसरा पहलू है और इस पहलू की तरफ मैं और आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। हम सिर्फ विश्वास से उसके पास आ सकते हैं कि वह हमारे बदले में मरा, अर्थात हमारे लिए मरा। इस सिलसिले में कुछ लोग सोचते हैं कि उसने अपनी परीक्षा के समय में स्वयं का बचाव नहीं किया, इसलिए उसने कभी भी अपना बचाव नहीं किया। तो मसीहों को भी उसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए और जो भी हो, दूसरे समय में उसने अपना बचाव किया। जब वह यरूशलेम मरने के लिए गया तो उसने बचाव नहीं किया, क्योंकि वह मेरा स्थान लेने जा रहे थे और मैं अपराधी हूं, मेरा विश्वास कीजिए कि कोई भी बचाव नहीं था। यही कारण था कि उसने अपना मुंह उस समय नहीं खोला। वह मेरे पापों को उठा रहे थे और वह आपके पापों को भी उस समय अपने ऊपर ले रहे थे। मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और देखो मार्ग के किनारे बैठे दो अंधे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। मित्रों मैं इन दो लोगों को पसंद करता हूं, कोई भी इन्हें शांत नहीं रख सका। हम मत्ती सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 31 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है भीड़ के लोगों ने उन्हें डांट कर कहा कि चुप रहें, पर वे और भी जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस पर ध्यान दीजिए कि वे उसे बिल्कुल सही तरीके से संबोधित करते हैं, हे प्रभु दाऊद की संतान। उन्होंने उसके राजा होने की बात को स्वीकार किया। सबसे पहले एक गैर यहूदी स्त्री ने उसे दाऊद की संतान कहा था, परंतु प्रभु ने उसे याद दिलाया कि उसे इस तरीके से उसको मांगने का कोई हक या अधिकार नहीं है। ये पुरुष यहूदी थे और उनके पास उससे मांग करने का अधिकार था और उन्होंने उस अधिकार का उपयोग भी किया। मत्ती 20 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है तब यीशु ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। इन व्यक्तियों की समस्या बहुत स्पष्ट लगती है। प्रभु ने उनसे क्यों पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे प्रिय मित्र, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप अपनी आवश्यकता को उसे जरूर बताएं। यदि आप उसके पास उद्धार पाने के लिए आ रहे हैं तो आप उसे बताइए कि आप एक पापी हैं और आपको उसके उद्धार की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। वही क्रूस की बाधा है। यदि लोग अपने साथ अपनी स्वयं की धार्मिकता के सुगंध द्रव्य और अच्छे कार्यों को साथ ला सकेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति क्रूस के पास आना चाहेगा। लेकिन मेरे मित्र, आपके पास और मेरे पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं जिसे हम परमेश्वर को प्रस्तुत कर सकें। आप मनुष्य के हृदय को व चरित्र को अपने प्रशिक्षण और मनोविज्ञान और शिक्षा के आधार पर मीठा नहीं कर सकते हैं, पर आप खाद के एक ढेर को बाहर घास में किसी तरीके से मीठा बना सकते हैं। हमें उसके पास एक पापी के रूप में आना है और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। अंधे पुरुष यीशु के पास अपनी आवश्यकताओं को साथ लाए। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। हम मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय उसके 34 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तत्काल ही देखने लगे और उसके पीछे चल दिए। मित्रों, हमारे प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया और उन्होंने उसका अनुसरण किया। आप इस बात को याद रखें कि वह कहां जा रहे हैं। वह अपने क्रूस के मार्ग पर हैं। यहां पर अध्याय 20 समाप्त होता है, इसलिए हम अध्याय 21 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम इन विषयों पर विचार करेंगे। यीशु का औपचारिक तौर पर यरूशलेम में प्रवेश, मंदिर को साफ करना, अंजीर के पेड़ को श्रापित करना, मुख्य याजक और शास्त्रियों द्वारा चुनौती दी जाने पर उनका विरोध, दो पुत्रों के दृष्टांत के द्वारा करना और स्वामी जिसके दासों ने उसके पुत्र को मार डाला, इन्हीं विषयों पर हम विचार करेंगे। मित्रों, मत्ती में गतिविधि फिर से इस अध्याय के निश्चित केंद्र बिंदु में वापस आती है। अब तक अर्थात इसके पहले यीशु यरूशलेम में सावधानी से प्रवेश करते थे। नई भूमिका में जब हम आते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसके पहले वह यरूशलेम में सावधानी से प्रवेश करते थे, अब वह एक राजा की तरह राजा के नगर में अपने दावों पर बल देते हैं। इससे बढ़कर और कुछ भी इतना सीधा या साहसी नहीं हो सकता था। वह दूसरी बार मंदिर को साफ करते हैं। यदि वह जो दावा करता है वो नहीं है तो यह पहली बार की तरह सिर्फ अनुमान करना होगा। वह अंजीर के पेड़ को श्रापित करते हैं जो एक सांकेतिक कार्य है। वह धार्मिक अगुओं को चुनौतियों का सामना करते हैं और दृष्टांत के द्वारा उन्हें फटकार भी लगाते हैं जो उसको मारने की योजना बना रहे थे। आप यीशु के नियम में निर्णायक और संकल्पित स्वर को पाएंगे। अब वह समस्या पर जोर दे रहे हैं। जब भी वह चाहता है वह उन्हें कार्य करने के लिए दबाव डाल सकता है। वह कभी भी इतना राजसी नहीं हुआ जितना कि वह जब क्रूस पर पहुंचा। आगे हम विजय प्रवेश को देखते हैं। मत्तयी सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचकर जैतून पर्वत पर बैतफगे को आए तो यीशु ने दो चेलों को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी के साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उनको खोलकर मेरे पास लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, और वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मित्रों, इस घटना में मैं कोई भी चमत्कार के विषय पढ़ने की बात नहीं देखता हूँ। यद्यपि बहुत से लोग ऐसा करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि यह एक साधारण स्वाभाविक परिस्थिति है। संभवतः जब हमारे प्रभु आखिरी बार यरूशलेम में थे तो उसने अपने कुछ मित्रों के साथ इंतजाम किया होगा कि वे इस गधे या जानवर का उपयोग उसके अगले बार इस शहर में आने के समय करें, और हो सकता है कि उसने उन्हें बता दिया होगा कि वह क्या करने वाला है, और वे सहमत हुए कि उसके लिए फसा के पर्व के लिए तैयारी की जाए। मैं सोचता हूँ कि उसने उन्हें कहा होगा कि वह अपने कुछ शिष्यों को भेजेगा कि वे उन्हें लाए, अर्थात गधों को लाए, और वह उन्हें बताएगा कि क्या कहना है। प्रभु को इनकी आवश्यकता है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि हम इस घटना को इस तरीके से देखें तो यह और भी अधिक अद्भुत होगा। मत्तयी सुसमाचार 21 अध्याय के 4-5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। मित्रों, यह उद्धरण जकरयाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 9 पद से लिया गया है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सियोन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। मित्रों, मत्ती के उद्धरण में कुछ निश्चित विलोपन है जिसे एक ध्यानपूर्ण तुलना ही प्रकट कर सकती है। हे सियोन की पुत्री अति आनंदित हो, मत्ती में यह सब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु उस समय में आनंदित होने के लिए यरूशलेम नहीं आ रहे थे, वह उसके दूसरे आगमन के समय के लिए होगा। वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, यह भी मत्ती में विलोपन है। शब्द उद्धार का विचार विजय से है जो उसके दूसरे आगमन में पूर्ण होगा। इस परिच्छेद से एक निष्कर्ष निकलता है कि जहां उसके दूसरे आगमन में एक सच्चा विजय प्रवेश होगा, और ऐसा माना जाता है कि हमारे प्रभु इस छोटे गधे के ऊपर बैठकर अपनी नम्रता को दिखा रहे थे, जो सही नहीं है। इस छोटे जानवर पर राजा के द्वारा सवारी की जाती थी। हमारे दिनों में यह BMW कार चलाने के जैसे है। गधा शांति का प्रतीक था, जबकि घोड़ा युद्ध का एक जानवर था। जब यीशु यरूशलेम में इस छोटे गधे पर, जो शांति का प्रतीक है, सवारी करके आए तो वह अपने आप को एक राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि इसकी वास्तविकता जानते हुए भी भविष्यवक्ता कहते हैं कि वह नम्र था, जिसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्तयी सुसमाचार 21 अध्याय उसके 6-9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें निर्देश दिया था वैसा ही किया। उन्होंने गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने वस्त्र डाले और वह सवार हो गया। भीड़ में से बहुतों ने अपने वस्त्र मार्ग में बिछाए और दूसरों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ उसके आगे जा रही थी और वे भी जो उसके पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, सर्वोच्च स्थान में होसन्ना। मित्रों, यह संभव है कि वह इस मार्ग से होकर पहले कभी भी नहीं आया था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे। मैं सोचता हूँ कि वह साधारण भेड़ फाटक के द्वारा बहुत सावधानी से अंदर आए, जिस फाटक से होकर जानवरों को बलिदान के लिए लाया जाता था, परंतु इस समय नहीं। यहाँ पर वह एक राजा के जैसे सवारी कर रहे हैं और जो लोग उसके साथ हैं वे उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, या उनके लिए अवसर है कि वे उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। हम मत्ती 21 अध्याय उसके 10 और 11 पद में आगे पढ़ते हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सब कहने लगे, यह कौन है? और भीड़ के लोग कह रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। हमारे प्रभु यरूशलेम को बाध्य करते हैं कि इस अंतिम क्षण में उसके दावों को स्वीकार कर लें। तब आगे मंदिर की दूसरी बार सफाई को देखते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने मंदिर में प्रवेश करके उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों की मेज और कबूतर को बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मित्रों, यह बहुत ही कठोर भाषा है कि नहीं? अब मैं आपके ध्यान को कुछ निश्चित सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसे विजयपूर्ण प्रवेश कहा जाता है। सबसे पहले मैं यह नहीं सोचता हूं कि विजयपूर्ण प्रवेश इसके लिए सही नाम है, क्योंकि हमने देखा है कि जकर्याह के कुछ निश्चित भाग की भविष्यवाणियां ही पूर्ण हुई हैं। हमारे प्रभु यरूशलेम नगर में इसलिए आए ताकि वह उद्धारकर्ता बन सके। वह अंतिम बार अपने आप को समूह के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आप चारों सुसमाचारों के लेखों पर एक साथ ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वे एक मिश्रित या संयुक्त तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उपसंहार है कि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन नगर में प्रवेश नहीं किया था, परंतु 3 अलग अलग दिनों में प्रवेश किया। पहली बार शनिवार का दिन था, सप्त का दिन। उस दिन में कोई भी पैसे के लेन देन करने वाले वहां पर नहीं थे। उसने चारों ओर देखा और चला गया। मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11 पद में लिखा है, वह यरूशलेम में प्रवेश करके मंदिर में आया और चारों ओर देखकर बारहों के साथ बैतनिया को चल दिया, क्योंकि संध्या हो चुकी थी। मित्रों, उन्होंने एक याजक की तरह प्रवेश किया। दूसरी बार जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह रविवार का दिन था, जो सप्ताह का पहला दिन था। पैसों की लेन देन करने वाले वहां पर थे और उसने मंदिर को साफ किया। पद 12 और 13 में हमने देखा है, इस दिन उन्होंने एक राजा की तरह प्रवेश किया। और तीसरी बार जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वह सोमवार का दिन था, जो सप्ताह का दूसरा दिन था। उस समय वह यरूशलेम की दशा पर रोया। तब उसने मंदिर में प्रवेश किया और शिक्षा दी और चंगाई भी की। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41 से 44 पद और 47 से 48 पद में हम इसे देख सकते हैं। उस दिन उसने एक नबी के रूप में प्रवेश किया। मित्रों, जब हम इन 3 लेखों की तुलना करते हैं, मत्ती, मार्कुस और लूका, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 3 अलग अलग प्रवेश के लेख हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे प्रभु ने 3 क्रमागत दिनों में यरूशलेम में प्रवेश किया और वो 3 क्रमागत भूमिका में आए, याजक के जैसे, राजा के जैसे और भविष्यवक्ता के जैसे। और प्रत्येक दिन वह बैतनिया को लौट गए। स्पष्ट रूप से उसने नगर में रात नहीं बिताई जब तक कि वह पकड़ा न गया। मित्रों, इस बात को याद करें कि जिसे विजयपूर्ण प्रवेश कहा गया था उसका अंत क्रूस पर हो गया, परंतु वह दूसरी बार विजय के साथ आएंगे। इब्रानियों की पत्रिका लेखक इसे एक साथ बड़ी अद्भुत रीति से इस प्रकार रखते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं। मित्रों, हमें जकर्याह 14 अध्याय और उसके 4 पद में बताया गया है कि जब वह अगली बार इस पृथ्वी पर आता है तो उसका पैर जैतून पर्वत पर होगा, वहीं से वह पृथ्वी को छुएगा। तब जब वह यरूशलेम नगर में प्रवेश करता है तो वही विजयपूर्ण प्रवेश होगा। मैं पहले के उन प्रवेशों को जो यरूशलेम में किए गए विजयपूर्ण प्रवेश नहीं कह सकता, क्योंकि वह अपनी मृत्यु के लिए क्रूस के रास्ते पर थे कि वह आपके और मेरे पापों के बदले में मरे। प्रभु के मंदिर को साफ करने के बाद बहुत से लोग उसकी सहायता करने के लिए आए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां पर हम पढ़ते हैं, तब अंधे और लंगड़े उसके पास मंदिर में आए और उसने उन्हें चंगा किया। यहां पर ध्यान दीजिए कि मत्ती किस प्रकार इस सत्य पर अधिक महत्व देते हैं कि जनसमूह के लोग चंगे किए गए। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु जब मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने उन आश्चर्य कर्मों को जो उसने किए थे देखा, और बच्चों को जो मंदिर में यह पुकार रहे थे, दाऊद की संतान को होसाना, तो वे क्रोधित हो गए। मित्रों, वे इससे अप्रसन्न हुए। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 16 और 17 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उन्होंने उससे कहा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पर क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, शिशुओं को और दुधमुह बच्चों से तूने अपने लिए स्तुति तैयार की। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां ठहरा। तब वह उन्हें छोड़कर, यह धार्मिक अगुओं के प्रति उसके अस्वीकृति को बताता है, और नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे प्रभु ने यरूशलेम में रात नहीं बिताई, जब तक कि वह रात्रि को पकड़ा ना गया। परंतु हम पाते हैं कि वह दूसरे दिन नगर में वापस आते हैं। मैं सोचता हूं कि इसी प्रवेश को लूका हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। उसका तीसरा और अंतिम प्रवेश सोमवार की सुबह हुआ। मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर रोक देते हैं, और अगले अध्ययन में इसके आगे के विषयों पर हम लगातार विचार करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा नई नई बातों को सीख रहे हैं, जैसे कि मैं भी सीख रहा हूं। कृपया आप अपने आशीषों को लिखकर मुझे अवश्य बताएं, और यदि प्रार्थना के विषय आपके पास में है या कोई समस्या है तो आप हमें अवश्य लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपकी सहायता करने पाएं। यदि आप किसी बात को नहीं समझ रहे हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। कृपया आप हमें पत्र या फोन के द्वारा अवश्य संपर्क करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
आसमां कुछ था, ये जमीन कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राज आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे जीवन अपना निसा, जीवन अपना निसा, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा, तेरा हो
श्रोताओ। अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, ना कोई मंजिल और ना किनारा,